लेकिन कुछ लोग दुश्मन होते हैं, किसके? उनका जिक्र है, सुनिए आयत 98। कौन लोग? जिनका तذکرہ किया गया आयत 97 में, फरमाया कुछ लोग जो हक के दुश्मन होते हैं, तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह का और इसके फरिश्तों और इसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है। कुछ लोग राजाते की दुश्मनी रखते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। यहूद ने कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया था, नंबर एक, ये बहुत मुश्किल शरीयत लेकर आते हैं, तौरात इतनी मुश्किल थी, हम नहीं बोलते जिब्राइल से। कोई कहता है इन्होंने आकर कौमों को तबाह कर दिया। भाई जिब्राइल का क्या काम, वो तो अल्लाह के भेजे हुए हैं। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई पार्सल आए और आप उस पार्सल आने वाली कंपनी के खिलाफ हो जाएं कि देखो इन्होंने मुझे इतनी बुरी चीज़ दी है, मैंने तो अच्छी ऑर्डर की थी, ये बुरी निकली। भाई वो कहेंगे जो उन्होंने भेजी हमने दे दी, ज्यादा से ज्यादा यही है, वापस कर दें रिटर्न लेबल लगाकर। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए, बीच के जो लोग होते हैं ना, इनमें नहीं उलझना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुश्मनी की बात उन्होंने की, अभी आगे ये मज़मून आने वाला है, आप देखेंगे। अल्लाह ने कहा तुम मेरे जिब्राइल के दुश्मन हो, देखना जरा मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देखिए जब कोई आपकी दुश्मनी करे, अल्लाह के और करीब हो जाए, और सजदे और रुकू और तजदे और अल्लाह से मनाजात, बस आप अल्लाह के वली बनते जाएं। और वली वो नहीं होता जो जंगलों में फिरते हैं और गले में माला डाल के फिरते हैं। वली कौन है ये हम पढ़ेंगे सूरह यूनुस में, अल्लज़ीना कानू यत्तकून से लेके एक लंबी लिस्ट है, सुन्नतों को फॉलो करें। जब आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे, अल्लाह खुद ही निबट लेगा, ऐसे रास्ते बनाएगा कि आप नहीं सोच नहीं सकते, ना वो सोच सकते। दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो जिब्राइल का साथ देते हुए अल्लाह ताला ने इन आयतों में एक बड़ी प्यारी बात सिखाई आयत 99 में, और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो इनकी एक ना एक जमात इसे तोड़ देती है, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इनके अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही ना थे। लीस्ट प्रायोरिटी किताब को दे दी, वक्त ही नहीं है किताब का। आज आप और मैं अपने आप से पूछें, मेरी जिंदगी में किताब कहाँ है? सब कुछ करने का वक्त है, किताब का नहीं। सब चीजों के लिए माल है, किताब के लिए नहीं। सब चीजों के लिए आइडियाज और बड़े बड़े ख्वाब हैं, किताब के लिए नहीं। कभी आपने इस किताब के बारे में कोई ख्वाब देखा है? मैं अपने वक्त को पीछे ले जाती हूँ ना, जब मैंने शऊर से कुरान पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है बचपन से घर नेक माहौल था, शुरू से जिस दिन आंख खोली उस दिन से लेके आज तक घर में अल्लाह रसूल की बात ही सुनी, कुरान और सुन्नत गुट्ठी में पड़ा हुआ है। लेकिन जब इसको शऊर से पढ़ा, जैसे आप इस वक्त दारे कुरान सुन रहे हैं ना, मैंने जब पहली दफा कुरान का तर्जुमा पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि ये खजाना क्या है। ये इतनी बड़ी किताब है कि इसको पढ़ने के बाद इंसान अपना ही नहीं रहता, चेंज हो जाता है। लेकिन तदब्बुर के बगैर अगर पढ़ेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है। इसी से प्रायोरिटीज बदलती है। ऐसा ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में सिर्फ किताब रह जाती है? आपका ये मेरा टेबल है ना, तो इस पे मैं अब एक चीज रखूंगी तो दूसरी के लिए जगह कम होगी। थोड़ी बहुत जगह अगर है कुछ रखती जाऊँ, जिस वक्त ये पूरा भर जाएगा तो कोई मजीद किताब या कोई चीज सामने रखनी होगी तो क्या करूंगी, कुछ हटाऊंगी ना। अच्छा ये ग्लास उठा दें, ये पानी की बोतल उठा दें, रख दें। हमारे सेनों में जब बहुत दुनिया की चीजें भर जाती है ना, तो वक्त ही नहीं मिलता, ना सोच, ना स्किल, ना ख्वाब। तो ख्वाब देखें, तो जब मैंने पहली दफा कुरान को शऊर से पढ़ा ना, मैंने उस क्लासरूम में बैठकर जो ख्वाब देखे थे, मेरी टीचर पढ़ा रही होती थी, मैं सुनती तो गौर से थी लेकिन मैं पहुंच कहीं और जाती थी। इम्पॉसिबल चीजें अल्लाह मेरे दिमाग में देता था, ना हालात थे ना औकात थी, कुछ नहीं था। और आज यहाँ तहदीस नेमत के लिए कहूंगी, अल्लाह ने ना सिर्फ एक ही ख्वाब पूरा किया, उसे भड़के दिया और आंखों में देखे भी और रातों के ख्वाबों को भी ऐसे पूरा किया कि मैं खुद हैरान हूं ये कैसे अल्लाह कर देता है। इस वक्त अल्लाह के आप मेरे से ज्यादा करीब हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके अंदर तलब है। आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे, हाय नहीं आता, पहली दफा ही सुन रहे हैं आप भी, और मेरा तो दिल ही खुलता है उन लोगों में जो पहली दफा सुनते हैं। अगर जगह इधर खत्म हो गई ना तो वो लोग बेशक घर से सुन लें जो पहले सुन चुके हैं, और अपनी कुर्सी ऑफर कर दें उनको जो पहली दफा सुन रहे हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पहली दफा सुनने वाले लोग, जिनके दिल हिदायत के लिए खोले होते हैं। वो तो हर बात में अपने आप को कोस रहे, अंदर आंसू गिर रहे होते हैं, अंदर कोसने पड़ रहे होते हैं, तुमने नहीं बचना, तुमने नहीं बख्शा जाना। और जो पहले पड़े होते हैं ना वो तकाबुल कर रहे हैं, फलाने ये कहा था, इन्होंने ये कहा, पहले ये कहा था, वो कहा था। पहला दौरा कुरान पहली मोहब्बत है, दिल खुलता है ना फौरन लबैक कह दे, समेना वाह अतवाना। चलिए अब तदब्बुर करते हैं आयत 94 से 101 पे। आयत पर अमल, नेकी के किसी बड़े अमल को अपनाइए कि आखिरत की लगन पैदा हो। यहाँ अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम करा और आखिरत में फिर मुझे बड़ा दर्जा दे। और याद रखिए, बड़े से मुराद बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी में। एक बंदे को आपकी वजह से हिदायत मिल जाए 100 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। और एक सुर्ख ऊंट आज अरब में रहते हुए किसी से मुझे भी पूछ के बताइए आज कितने का मिलता है। लैंड क्रूजर्स गाड़ियां करोड़ों की हैं इस वक्त, सुर्ख ऊंट तो पता नहीं कितने करोड़ का होगा। आपकी कोशिश है सिर्फ एक और आकर बैठ जाए इधर, अगर जगह तो, बस तड़प के दुआ करके सिर्फ वन ऑन वन एक से एक को मिला ले, खुद तंग हो जाए अगले को बिठा ले। अपनी गाड़ी में अकेले आते हैं, दो चार को और बिठा ले, आपका ये अमल इतना बड़ा हो जाएगा कि कई बड़े बड़े बड़के मारने वालों के अमल उसके आगे छोटे हो जाएंगे। दिन ब दिन नेकियां कर करके ना आदत हो जाती है, फिर बंदे को वो खुशबू नहीं मिलता जो पहले मिलता है। तो जो ये नया नया दिल खुलता है ना, इसमें बड़े बड़े ख्वाब देखिए। फिर अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक रखिए, आज से अल्लाह से चुपके चुपके बातें करें। अल्लाह ताला मैं आपसे कब मिलूंगी, और अल्लाह मैं जब से आपसे मिलूँ तो मैं पूरी साफ हो चुकी हूँ, मुझे गंदे मुंह के साथ आपको नहीं मिलना, गंदे कपड़ों के साथ नहीं मिलना, पसीने वाले कपड़ों से नहीं मिलना। किसी को भी मिलने जाए तो साफ सुथरे होते हैं कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। किसी को मिलने जाए कोई आपके घर है, साफ हो, नहाए धोए साफ पहने, ये उसको आप इज्जत दे रहे होते हैं कि हमें तुम्हारे आने की खुशी है या तुम्हें बुलाकर हमें खुशी हुई है, और फिर उसमें आपका खुशी भी बढ़ता है। तो अल्लाह से मिलना, मुलाकात, इसकी तैयारी तौबा का गुस्सल है। तौबा के पानी से गुस्ल कीजिए, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता फिर इतर भी लगेगा, खुशबू भी लगेगी, रंग भी लगा लेंगे। जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं आप उसके लिए तैयार होते हैं। लोग क्यों शादियों में इतना ही जान फाहे पे लगाकर अपने आप को सजा संवार के बिठाते हैं, क्योंकि उसकी ऑनर है, उसकी इज्जत है। तो आप अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को कैसे खूबसूरत करेंगे, और इसके लिए अगली बात लिख लें, नेक लोगों की सोहबत को अपना लें। आधा काम तो इधर ही आसान हो जाएगा, सोहबते सालेहीन। अरब शायर था, वो कहता है कि मैं नेक तो नहीं हूँ लेकिन नेकों से मोहब्बत बहुत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यही मोहब्बत मुझे कल क़यामत के दिन जन्नत में ले जाएगी। कुरान से रहनुमाई के नुक्ते, जब बंदे के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो मौत से गफलत बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे घर गंदा हो जाए ना तो फिर और ही गंदा कर लो, सुस्ती आती है, अब कैसे और गंदा कर लो, फिर एक ही दफ़ा साफ़ करेंगे। और जब अब नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो इतने कॉन्शियस होते हैं पसीना भी ना आए, कोई चीज़ भी ना गिरे। तो आपको मुझे निकियाँ करनी है ताकि हमें गुनाहों की बू आने लगे। वही कपड़े जो पहले पहने फिर रहे होते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन शावर लेकर दोबारा वही लॉन का सूट पहने तो दिल नहीं करता पहनने को, स्मेल आती है, हाय मैंने ये पहने हुए थे। बस ये जो तौबा और दिल की तब्दीली है ना, इसके जरिए से आपको क्या होगा, क्या आहिस्ता आहिस्ता आप फिर अपनी बू को महसूस करेंगे जो गुनाहों की वजह से आती है। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। तवील हदीस है, हदीस से जिब्राइल के नाम पे भी आती है, आसमानों से मोहब्बत शुरू होती है, अल्लाह करते हैं फिर जिब्राइल करते हैं फिर आसमानों वाले करते हैं फिर ज़मीन वाले फरिश्ते करते हैं, फिर ज़मीन के लोगों में उसकी शोहरत डाल दी जाती है, उसकी कबूलियत डाल दी जाती है। और अपोजिट भी है, आपको मुझे किससे फिर मोहब्बत लेनी, दिल क्या चाहता है लोगों का, बंदे हमसे मोहब्बत करें। तो जुमला लिखिए, बंदों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत और फरिश्तों की मोहब्बत से गुजर के मिलती है। आप अल्लाह से मोहब्बत कर लें या अल्लाह से मोहब्बत वाले काम कर लें, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेंगे, पूरी दुनिया में आपकी मोहब्बतें होंगी। हमारे आइमा कराम जेल की सलाखों के पीछे से उनके जनाजे उठे और पूरा शहर उसके लिए जमा हो गया था बाहर जेल के। खलीफे वक्त कहने पे मजबूर हो गया, क्या इमाम मैंने तुझे जेल में तो डाल दिया लेकिन लोगों के दिल से तेरी मोहब्बत नहीं निकाल सका। अल्लाह अकबर। नेक बंदों से दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी मोल लेने के मुतरादिफ है। इस पे तो हदीस कुदसी है, जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अल्लाह ताला हमें दूसरों से बेनियाज कर दे। गौर व फिक्र के गोशे लीजिए, जिसे जन्नती होने का यकीन हो फिर उसे तो मौत महबूब हो जानी चाहिए। तो क्यों वो लोग जो खुद को जन्नती करार देते हैं फिर वो मौत से मोहब्बत नहीं करते। आज आम तौर पे देखा जाए तो लफ्ज़ जिहाद, क़िताल, जंग के साथ मौत का लफ्ज़ आता है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा खतरा तो जहाज में होता है। अल्लाह ना करे जहाज गिर गया तो बचना बहुत मुहाल है, लोग जहाज में बैठना नहीं छोड़ते। गाड़ी में चलना जाना, रोड्स पे बड़ी बड़ी कह लीजिए गाड़ियों के अंदर से गुजरना, बसों और वैगनों के इर्द गिर्द से गुजर कर जाना, ये बड़ा खतरों वाला है। किसी ने नहीं छोड़ा बसों में बैठना, गाड़ियों में बैठना। तो फिर अल्लाह के रास्ते की मौत से क्यों डरते हैं? ये तो एक धोखा है। मारफत इलाही के बाद मौत की तमन्ना अल्लाह से दुरुस्त ताल्लुक की निशानी है। आपका ताल्लुक जिससे अच्छा होता है ना, आप उसको मिलना चाहते हैं, और जिससे बुगज हो, कुछ लेन देन का मामला, उसे छुपते फिरते हैं। तो खुद से पूछिए कि अल्लाह ताला से मुलाकात को दिल चाहता है? लंबी उम्र भी इंसान को अजाब से नहीं बचा सकती, तो लंबी उम्र से ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ, नेकियों वाली खैर वाली जिंदगी की दुआ करें। जन्नत वही पाएगा जो अल्लाह के लिए अपने दीन को खालिस कर ले। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। सलफ सालेहीन में से कौल, गौर व फिक्र के नगोशों में, किताब इलाही को छोड़ना क्या है? अल्लाह की किताब को रेशम के कपड़ों में सजाया, सोने और चांदी से आरास्ता किया और उस पर अमल नहीं किया। ये है वरा ज़हूरी है। आज हम खुद अपने ऊपर सोच लें, जुजदान खरीरो रेशम के, लेकिन इस किताब पे अमल नहीं है। बेटी की शादी के मौके पे इसके साए में तो रुख्सती करते हैं, लेकिन जब किताब खुलती है तो उससे हम घबराते हैं। अल्लाह हमें बचा दे। अब आगे जादू से मतलब कुछ चीज़ें हैं। आयत 102 से 105 बकरा, जादू का तस्करा है। वत्तबउ मा तत्लु शयातीन वला मुल्कि सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू। जादू कुफर है, और इस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफर ना किया था, बल्कि ये कुफर शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को इस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तुम कुफर ना करो। फिर लोग इनसे वो सीखते हैं जिससे खावन बीवी में जुदाई डाल दें, यानी जादू की बदतरीन किस्म शौहर बीवी को जुदा करना एक दूसरे से। और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा ना पहुंचा सके, और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश के ये जानते होते। अगर ये लोग साहिब ईमान यानी मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता, अगर ये जानते होते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो बल्कि उंजुर ना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यह आखिरी आयत जो भी पढ़ी, 104, लिखिए तौहीने रिसालत की सज़ा। आज के दौर में क्या है हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जादुल खैर के डे टू था, चेक कर सकते हैं, नो इश्यूज। हमने हकूक रहमतुल आलमीन पढ़े, 10 हकूक थे, 8 से 10 के बीच में। उसमें एक हक क्या था कि अगर कोई नबी सल्लम की तौहीन करे तो उसके साथ क्या किया जाए, और इस पे कुरान सुन्नत बहुत क्लियर है। फुकहा के और उलमा के और अपने दौर के जो मशाए हैं उनके फतावा भी हैं। ये आज मेरे आपके लिए हुक्म है, और हुक्मरानों के ये फराइज में से है कि वो इस काम में क्या किरदार अदा करें। लेकिन नबी की जिंदगी में क्या होता था, ये इस आयत से देखिए। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों को सब के लिए खोला हुआ था, खुले दिल वालों के दिल भी खुले होते हैं, उनकी महफिलें भी खुली होती हैं। वो ये नहीं कह सकते फुलानी आ सकता फुलानी आ सकता। और मेरी आंखों ने एक मस्जिद के ऊपर देखा लिखा हुआ कतबा कि फुलां फुलां मसलक का बंदा इस मस्जिद में पाँव ना रखे। और मस्जिदों के बाहर ही आप एक टैग लगाते हैं फुलां मस्जिद, ताकि बस वही आए। नबी का दिल भी खुला था। मोमिन बड़ा भोला भाला होता है। नबी ने किसी को ना ब्लॉक किया, ना किसी को कोई पासवर्ड उससे छुपाया, ना उसको कहा कि तुम आगे तो ये कर दूंगा, आ जाओ। तो मुसलमान भी आ जाते, यहूद भी आते थे, मुनाफिक भी आ जाते थे कभी कभी। अब होता क्या कि जिसका दिल खोटा होता है ना, वो सुन नहीं रहा होता, वो सुनाने के मूड में होता है, वो फितना उठाने के लिए था। वो नबी के लफ्जों को देखते, सहाबा के अमल को देखते। अब एक काम प्रोटोकॉल था उस महफिल का, और वो क्या था कि जैसे मैं इस वक्त बात कर रही हूँ और मेरी कोई बात आप पूरी ना नोट कर सकें, तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, पार्डन, माजरत से ज़रा दोहरा दे, कोई भी जुमला बोल सकते हैं ना, कोड वर्ड होता है। सहाबा कराम नबी सल्लम को कभी ऐसी किसी बात पे रोकना चाहते तो क्या कहते थे? राइना, हमारी रियायत कीजिए। वही बात होगी ना कि भाई आप तो इतना तेज बोल रहे हैं, जरा आहिस्ता बोलें, ये एक अंदाज था ना। अच्छा, वो ऐसा कर सकते थे करते। जो वहां खोटे दिल के लोग थे ना, उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ा मजा आएगा। क्या वो जरा बीच में महफिल देखते ना, असर वाली, जैसे इस वक्त आप पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहे हैं ना, दिल पे असर हो रहा है ना। अब वो जब देखते कि बड़ा ही असर हो रहा है नबी की बात का, तो बीच में ना शोशा छोड़ते, तो क्या कहते? राई ना, आइन के बाद या बढ़ाते, और राई अरबी में कहते हैं चरवाहे को, शेफट। तौहीन रिसालत थी, नबी के मुंह पे बैठ के कर रहे हैं तौहीन रिसालत। लेकिन अभी वो माहौल कौन सा था, कैसा था? वो अभी इंटरफेस चल रहा था, अभी इस्लाम के वो सारे प्रोटोकॉल पूरे नहीं हुए। अल्लाह ने यहूद को छेड़ा भी नहीं, मुनाफिकीन अगर ऐसा कहते थे उनका तो तذکرہ नहीं किया, आपने सच्चे मुखलसीन को कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, तुम ये लफ्ज़ ही छोड़ दो। बंदा अपने को टोकता है ना, माँ अपने बच्चे को रोकेगी ना जब वो दूसरे के साथ शोर करेगा कि बेटा आप खामोश होके बैठे। ये इस्लाम का मिजाज समझिए। सहाबा को कहा थोड़े लफ्ज हैं और कोई, तुमने जरूर राई कहना है, तो मंजूर ना कह लो। काश आज हम मुसलमानों को ये बात समझ आ जाए, शिद्दत से बड़ी भी बातें, और ऐसी ऐसी बातें कि जिसने आज हमें नाकाबिले बर्दाश्त बना दी है। अल्लाह ने नबी सल्लम को पुकारने के आदाब सिखा दिए, और साथ ही बता क्या दिया कि नबी आप दिल में अल्लाह ना करें, या आपको जो राई कह देते हैं ना, दुख तो होगा ना। देखिए एक बशर था, इंसान था, अल्लाह के नबी बशर थे, उनको भी जज्बाती टॉर्चर मिल सकते थे। आपको जाके मुंह पे कोई बुरा कह दे तो आप खुश होंगे क्या? नबी का एक ह्यूमन लेवल तो पढ़िए। तो अब अगली आयतों में तसल्ली क्या दी जा रही है? ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नासिल हो। इनके इस हसद से क्या हुआ? अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खसूसियत से अता फरमाए, अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अल्लाह ने नबी के दिल पे पहा रख दिया, असल में ये आपसे जलते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं, आप क्यों दिल में अल्लाह करते हैं? क्या प्यारा मिजाज है। देखिए इस्लाम का मिजाज क्या है, रेमेडी। एक होती है क्योर और एक होती है रेमेडी, दोनों का फर्क जो जानते हैं उनको पता ही है। एक है बीमारी आने से पहले कुछ प्रिकॉशंस ले लो, कुछ तुम एहतियात कर लो ताकि बीमारी आए ना। दूसरी होती है बीमारी आ गई है तो अब दवा खाओ। दोनों अंदाज दिखते हैं, तो आइए देखते हैं आयत 102 से 105 में तदब्बर और अमल के पॉइंट्स। आयात पर अमल कैसे करेंगे? सुबह शाम हासिद और जादूगर के शर से अल्लाह की पनाह मांगनी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी तरफ कितने शर आ रहे हो। तो सुबह शाम की दुआएं मांगिए, पढ़िए बल्कि। और इसमें याद रखिए कि जादू का चूंकि टॉपिक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने अभी रिसेंटली ईमान बिल गैब की सीरीज के दौरान भी इस मौजू को टच किया है, और इस पे हमारे पूरे सेमिनार्स मौजूद हैं। दम ज़रिया इलाज जो अल्लाह मग़फ़रत फरमाए इब्ने बाज़ रहमहुल्लाह की किताब थी, वो पूरी बुक पढ़ाई हुई है, ऐप के ऊपर भी है, नूरुल कुरान के नाम पे है, यू के साथ नूर लिख लीजिए, और यूट्यूब पे भी है। किसी को किसी किस्म का कोई ख़तरा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घर में किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी ने जादू कर दिया करा दिया, आप इस बुक को लीजिए। कई जगह आपको ये बटने की बुक उसमें मिलेगी, उस बुक को लेकर एज इट इज़ फॉलो करें। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ पढ़ी बल्कि पढ़ाई बल्कि उसकी स्लाइड के साथ वो यूट्यूब पर मौजूद है, उसका लिंक ले लीजिए, उसमें दुआएं भी हैं, उसमें सब कुछ है, इसको पढ़े। और आम तौर पे भी सुबह शाम की दुआओं को ना छोड़िए, अस्कार करिए, पाक साफ रहिए, अपने दिल को साफ रखे। जिसका अकीदा पुख्ता होता है उस पर कोई जादू नहीं होता। अल्लाह ने नबी सल्लम को एक मुश्किल में डाला ताकि उम्मत के लिए आसानियाँ हो जाए। फिर इसी तरह ज़ौजैन के माबैन इस्लाह की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ शोहर बीवी के झगड़े की बात हुई तो आयतों पे अमल पे एक लिखिए, अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए फैमिली में, और जो आपको बता चुका है, ये नहीं कि खुद जाके पूछें आपके घर में कोई लड़ाई तो नहीं हुई हुई, या कुरेद करने लग जाएं, किसी रूठे हुए मियाँ बीवी के बीच में इस्लाह कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। दुख सुख के नाम पर एक प्रोजेक्ट भी है, डायरेक्ट उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच में रहते हैं। शौहर को बीवी से कोई मसला है, बीवी को शौहर से, एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत हम लोग डायरेक्ट उनसे बात करके उनकी काउंसलिंग कराते हैं। कोई ऐसा काम आप भी कर दीजिए। फैमिली के ऐसे किस्सों को चुस्के लेके मत सुनिए, दूसरों से मत पूछिए अब सुनाओ क्या हो रहा है, ये अभी भी अम्मा के घर बैठी है, ये फलां की बहू क्यों नहीं है इधर, ये है ये ना कीजिए, आपकी नेकियां ज़ाया होंगी। डायरेक्ट किसी की कोशिश कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिर इसी तरह माशरे में जादूगरों के शर से बचाव के लिए आगाही को फैलाइए, किसी को भी ऐसे कामों में मुलव्वस देखते हैं तो फिर आप उस पर थोड़ा सा उनको कॉन्शियस कीजिए। कुरान पाक से रहनुमाई क्या मिलती है कि जादू सीखना, सिखाना और करना और कराना हराम है। और लिख लीजिए, इलाज की खातिर भी, तोड़ करने के लिए भी जादू आप किसी पे नहीं कर सकते। किसी ने आप पे किया इसलिए आप कर रहे हैं, इसी वजह से तो बहुत सारे लोग करते हैं। अल्लाह की पनाह में आना हर शर से हिफाजत का जरिया है, तो जब अल्लाह की नजर है तो किसी ने क्या करना है, जब रब नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं होगा। उम्मत मोहम्मदिया से हसद की वजह से अहले किताब ताल्लुकात में हमेशा बिगाड़ रखते हैं। इस बात को समझ जाएंगे तो आपको खुद ही बहुत सारी बातें समझ आने लग जाएंगी। गौर व फिक्र के गोशे के, जादू शैतान को खुश किए बगैर नहीं सीखा जा सकता। शैतान को खुश करने के लिए शैतानी काम करने वालों को खुश करना पड़ता है, लिहाजा शयातीन बुरे और शरीर लोगों की मदद करते हैं। और असबाबो वसाइल की तासीर बहरहाल अल्लाह के हुक्म की ताबे होती है, यानी जितने मर्जी असबाब को इख्तियार कर ले, अल्लाह ताला जब तक इजाजत नहीं देते कोई ना किसी पे जादू कर सकता है और ना कोई इलाज कर सकता है। बोल में, रुखिया में, दुआओं में असर भी अल्लाह ही के हुक्म से आता है। खुद पढ़िए, अपना इलाज खुद करें। इस तरह जादू आखरत में फायदा नहीं देगा और ना अल्लाह से करीब करेगा। जादू की बुनियाद शिर्क, झूठ और जुल्म पर होती है। बड़ा गहरा ताल्लुक है और मैंने इसको ईमान के बाब में पढ़ाया अभी। ईमान बिल गैब में भी, अनसीन चीजों में आता है। जब तक कोई शिर्क ना करे ना, जिन्नात उसको जादू नहीं सिखाते। गंदगी डालना, कुरान को उल्टा लिखना, टॉयलेट पेपर की तरह पाकीजा चीजों को यूज करना, और फिर क्या गंदगी और बेहूदगी, गंदे खून के साथ कुछ लिख लिखा के करना, यानी सीढ़ियां काट के डालना, कब्रिस्तानों में चिल्ले करना, ये सब कुछ जादूगरों के लिए आम मारूफ भी है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, और अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला सवाब बहुत ज्यादा और दायमी है। लोगों से क्या लेना है, उनको उनके काम पे रखिए, अल्लाह पे नजरे लगाइए। जायज काम को भी हराम तरीके से करना जायज नहीं, यानी जादू। आगे जी, आयत नंबर 106 से 112, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नहति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा। ये कुरान का एक बहुत बड़ा इल्म है, इसको नासिख और मनसूख कहते हैं। उलूमुल कुरान में ये इतना अहम मौजू है कि जिसको ये इल्म ना हो उसको तफसीर कराने का हक ही नहीं है। तदरीजन ये इस्लाम, ये दीन नाफिज हुआ, कुछ बातें शुरू में और तरह से हल्की हल्की पेश की गई और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको बढ़ा दिया गया। लोगों ने इस तदरीज को कमजोरी समझा, हालांकि बात ऐसी नहीं। ऐसे जैसे मैं आपको आजकल पढ़ा रही हूँ तो शुरू में जरा आराम से पढ़ाऊं, पहला पारा हम 2 दिन में क्यों करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं कि आप यूज्ड टू हो जाएं, चीजों को समझें, और साथ जिनको आना है वो आते रहे ताकि उनके ज्यादा पारे ना मिस हो। आहिस्ता आहिस्ता आप जब समझने लग जाएंगे स्पीड भी तेज हो जाएगी, आपको मजा भी आने लग जाएगा, कुछ चीजें यूज टू हो जाएंगी। तो अब आप इसको मुनाफ़त कहेंगे या आप इसको सुकम या गलती कहेंगे, क्या शर्त है कि आपने 30 ही दिन में पूरा कुरान करना है? ये भी सब कुछ बिदात में बनता जा रहा है कि बस खाना पूरी के नाम पे काम कर दो, जैसे मर्जी तैसे करो, फायदा क्या होगा उसमें? बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने दीन को आहिस्ता आहिस्ता पेश किया, आसान शरीयत दी। पिछली किताबों से शरीयत में एक इंटरफेस आया, पर इसमें भी आया। तो लिहाजा इस सारी तमहीद को सामने रखकर सुनिए, जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें, उससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? क्या आपको इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं? क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफर से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाजे हो जाने के महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ़ करो और छोड़ो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है? गैर मुस्लिमों के साथ क्या करो? माफ़ कर दो और छोड़ दो। उस वक़्त की शरीयत को सामने रखकर आज के अहकामात का फ़र्क देख लीजिए। ये भी तदरीज थी, अल्लाह के नबी ने दिलों को माइल किया कायल करने से पहले। आज हम कायल करने के अंदाज में इतनी शिद्दत बरतते हैं कि माइल क्या होने, हमारे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं, अम्मी ने कह दिया अब इसलिए नहीं करना। मैं आना चाहती हूँ पर उन्होंने आते ही मुझे कहना है अच्छा तुम आ गई हो तो मैंने नहीं जाना। बच्चे को फजर के लिए उठा रहे हैं, इतनी सलवातें सुना रहे हैं कि वो कहता है अब अम्मी सो जाएंगी फिर ही उठूंगा। जहनमी होने का फतवा तो ये मुझे दे चुकी है, मुनाफिक तो ये मुझे कह चुकी है। अल्लाह के लिए अपनी जुबानों को छुरियां ना बनाए, चाकू ना बनाए। अल्लाह के नबी ने हमें सारे रोल मॉडल बनाकर दिखा दिए। नरम जुबान से जो बात की जाए, सख्त जुबान से बात करने से कई गुना ज्यादा मुअसर होती है। अपना अमल और रखें, तहज्जुदों में दुआएं करें औलादों के लिए। सख्ती के वक्त पे सख्ती कीजिए, नरमी के वक्त पे नरमी कीजिए। इन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद इसके कि हक वाजे हो गया, महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ़ करो और छोड़ दो। गौर कीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। अल्लाह अपना हुक्म ले आया, आज उनको नीस्तो नाबूद नहीं कर दिया जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कोई मामला किया। आज आपको अबू जहल का नाम कहीं दिखता है? अबू लहब का नाम कहीं दिखता है? अब्दुल्ला बिन उबई का नाम कोई अपने नाम पे रखना चाहता है? तो अल्लाह तो खुद ही काफी है अपने रसूल के लिए, और अल्लाह ताला आपको मुझे भी यही हुक्म देता है कि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर आपके कदम पे कदम रखें और आप जैसी जिंदगियां गुजार दें। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तो यहाँ दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरान, हमारा सुलासा हो गया आयत नंबर 109 पे। क्या सीखा आपने? 1/3 पारा आपने ले लिया। अल्लाह ताला हमसे इसका हक अदा कराए।